ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 9 अध्याय 18 श्लोक संख्या 6 से 16, तो जो 16 है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो हम इसको पढ़ेंगे। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। आत्मवृत्तमविज्ञाय कथसे बहुभिक्षुकी किं न प्रतिकशेऽस्माकम् गृहान् बलिभुजो यथा। आत्मवृत्तमविज्ञाय कथसे बहुभिक्षुकी किं न प्रतिक्षसेऽस्माकम् गृहान् बलिभुजो यथा। आत्मवृत्तमविज्ञाय कथसे बहुभिक्षुकी किं न प्रतिक्षसे अस्माकम् गृहान् बलिभुजो यथा। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति विदान स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की शब्दार्थ। आत्मवृत्तम अपनी स्थिति, अविज्ञाया ना समझकर, कथसे तुम पागलों की तरह बातें कर रही हो, बहु अधिक भिक्षुकी भिखारिन किम क्या ना नहीं प्रतीक्षा से प्रतीक्षा करती हूँ, अस्माकं हमारे गृहान घर पर बलि भुजा कौवे यथा जिस तरह। अनुवाद। अरे भिखारिन, जब तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है तो व्यर्थ ही क्यों इतना बोल रही हो। क्या तुम लोग अपनी जीविका के लिए हम पर आश्रित रह के कौओं की भांति हमारे घर पर प्रतीक्षा नहीं करते हो। तात्पर्य, कौए का कोई स्वतंत्र जीवन नहीं होता। वह ग्रस्तों द्वारा कूड़ेदान में फेंके गए झूठन पर पूरी तरह आश्रित होते हैं। ब्राह्मण अपने शिष्यों पर आश्रित रहते हैं, अतएव जब शर्मिष्ठा देवयानी द्वारा बुरी तरह अपमानित की गई तो उसे देवयानी की कौवे जैसी भिक्षु के परिवार से संबंधित बतलाया। स्त्रियों का स्वभाव है कि थोड़ा सा उकसाने पर भी वह वाक युद्ध करने लगती हैं। जैसा हम इस घटना में देख सकते हैं, उनका ऐसा स्वभाव बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की भागवत कक्षा में। तो शुरू करने से पहले मैं सभी भक्तों का आशीर्वाद की याचना करता हूँ, स्पेशली वरिष्ठ भक्तों से, कि मैं जो सुना है, जो पढ़ा है, उसको धरा सकूँ आपके दिव्य आनंद के लिए, मेरे अपने शुद्धिकरण के लिए। तो हमारा जो आज प्रसंग चल रहा है, इसका शीर्षक, जो चैप्टर का टाइटल है, राजा ययाति को यौवन की पुनः प्राप्ति, 9वां स्कंद 18वां अध्याय, और 6 से लेकर 16 श्लोक तक हम पढ़ रहे हैं। तो 6 से लेकर 16 श्लोक तक तात्पर्य नहीं है, तो मैं उनका एक बार अनुवाद पढ़ देता हूँ। 6वें श्लोक और 7वें श्लोक का ये अनुवाद है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार वृषप्रभा की पुत्री शर्मिष्ठा, जो अबोध किंतु स्वभाव से क्रोधी थी, शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा उसके सैकड़ों सखियों के साथ राजमहल के बगीचे में घूम रही थी। यह बगीचा कमल लीनियों तथा फूल फल के वृक्षों से पूर्ण था और उसमें मधुर गीत गाते पक्षी तथा भौरे निवास कर रहे थे। 8वां, जब तरुणी कमल नयनी लड़कियां जलाशय के तीर पर आई तो उन्होंने स्नान का आनंद लेना चाहा, फलतः किनारे पर अपने वस्त्र रख कर वे एक दूसरे पर जल उलीच उलीच कर जल क्रीड़ा करने लगी। नौवा, जल क्रीड़ा करते हुए लड़कियों ने सहसा शिवजी को ऊपर से जाते देखा, जो अपने बैल की पीठ पर अपनी पत्नी पार्वती समेत आसीन थे। नंगी होने के कारण लज्जित हुई लड़कियां तुरंत जल से बाहर निकल आईं और उन्होंने अपने वस्त्रों से अपने अपने शरीर ढक लिए। दसवां, शर्मिष्ठा ने अनजाने ही देवयानी की का वस्त्र पहन लिया, जिससे देवयानी को क्रोध आ गया और वह इस प्रकार बोली। ग्यारहवां श्लोक, अरे जरा देखो इन दासी शर्मिष्ठा की करतूते तो, इसमें सारे शिष्टाचार को ताक पर रख कर मेरे वस्त्र धारण कर लिए हैं, मानो यज्ञ के निर्मित रखे घी को कोई कुत्ता छीन ले। ग्यारहवां, बारहवां और तेरहवां का अनुवाद, सॉरी हाँ, बारह तेरह और चौदह। हम उन योग्य ब्राह्मणों में से हैं जिन्हें भगवान का मुख माना गया है। ब्राह्मणों ने अपनी तपस्या से समग्र विश्व का उत्पन्न किया है और वे परम सत्य को अपने अंतःकरण में सदैव धारण करते हैं। उन्होंने सौभाग्य के पथ का निर्देशन किया है, जो कि वैदिक सभ्यता का पथ है। वे इस जगत में एकमात्र पूजनीय हैं, अतएव उनकी स्तुति की जाती है और विभिन्न लोगों के नायक बड़े से बड़े देवता भी उनकी पूजा करते हैं। यहाँ तक कि सबको पवित्र करने वाले लक्ष्मी देवी के पति परमात्मा द्वारा भी वे पूजित हैं और हम तो इसलिए भी अधिक पूज्य हैं क्योंकि हम भृगुवंशी हैं। यद्यपि स्त्री का पिता असुर होकर हमारा शिष्य है, तो भी इसने मेरे वस्त्रों को उसी तरह धारण कर लिया है जिस तरह कोई शूद्र वैदिक ज्ञान का भार संभाले। पंद्रवा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, शर्मिष्ठा को जब इस तरह कठोर शब्दों से डांटा गया तो वह अत्यधिक क्रुद्ध हो उठी, सर्पणी की तरह गहरी सांस छोड़ती और अपने निचले होठ को अपने दांतों से चबाती वह शुक्राचार्य की पुत्री को इस तरह बोली, जो आज का श्लोक है, अरे भिखारिन, जब तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है तो व्यर्थ ही क्यों इतना बोल रही हो? क्या तुम लोग अपनी जीविका के लिए हम पर आश्रित रह के कौओं की भांति हमारे घर पर प्रतीक्षा नहीं करते हो? तो बड़ा रोचक प्रसंग है और शिक्षाप्रद भी है। ये महाराज नहुसा के वंशावली के बारे में चर्चा हो रही है और उनके 6 पुत्र हुए, जिसमें सबके सबसे बड़े का नाम था याति, और महाराज नहुसा उनको अपना राज्य देना चाहते थे, लेकिन याति ने सोचा कि अगर मैं राज्य को संभालूंगा तो मैं आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाऊंगा, तो इस वजह से वो राज्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और फिर किसी कारणवश जो उनके उससे छोटे होते हैं ययाति, वो राज्य को स्वीकार कर लेते हैं और पूरे विश्व राज्य करते हैं और उनकी उनका विवाह होता है शर्मिष्ठा और देवयानी से। तो श्री सुखदेव गोस्वामी फिर पूछते, परीक्षित महाराज पूछते हैं कि जो ययाति हैं वो तो राजा हैं, क्षत्रिय हैं, और जो देवयानी है वो तो शुक्राचार्य की पुत्री है जो ब्राह्मण कुल में है, तो ऐसा कैसे हो गया कि क्षत्रिय राजा ने ब्राह्मणी से विवाह कर लिया? जो शर्मिष्ठा है वो तो ठीक है, शर्मिष्ठा भी क्षत्राणी है और राजा क्या बोलते हैं वो भी क्षत्रिय हैं, तो इसलिए उनका विवाह तो समझ आता है, लेकिन ये कैसे हो गया? क्योंकि वैदिक संस्कृति में श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अनुलोम विवाह, जो अगर मान लीजिए राजा ब्राह्मण है तो जो स्त्री है वो क्षत्राणी हो सकती है, लेकिन राजा अगर क्षत्रिय है तो स्त्री अगर ब्राह्मणी है तो ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। तो इस तरह की जिज्ञासा करते हैं परीक्षित महाराज और उसके प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी इनकी कथा बताते हैं, जो हमने आज सुना कि एक बारी क्या हुआ कि देवयानी और शर्मिष्ठा स्नान कर रहे थे और उसी समय क्या हुआ, शिवजी वहाँ पर आते हैं पार्वती के साथ तो अपने वस्त्रों को ढकने लग जाती हैं, तो जो शर्मिष्ठा है जो शत्रानी है वो देवयानी के वस्त्रों को धारण कर लेती हैं और इससे उनको बहुत क्रोध आता है और वो क्रोध में देवयानी क्या बोलती हैं कि देखो इस शर्मिष्ठा की करतूते, इसने सारे शिष्टाचार को ताक कर हमारे वस्त्रों को धारण कर लिया है, कि मानो यज्ञ के निर्मित रखे घी को कोई कुत्ता छीन ले। तो ऐसे वो दिव्यानी बोलती हैं कि तुम्हारा ये अधिकार नहीं है, तुम ब्राह्मणों को ये ब्राह्मणों के वस्त्रों को धारण कर सको। फिर बताती हैं कि ब्राह्मणों के क्या गुण हैं, कि भगवान को ब्राह्मण को तो भगवान का मुख बताया गया है, और ब्राह्मण तो अपनी तपस्या के कारण पूरे विश्व में विश्व का उत्पन्न करते हैं, वो सत्य के लिए जाना जाते हैं, और भगवान भी उनकी, देवी देवता भी उनकी पूजा करते हैं। और फिर वो कहती हैं कि हम तो साधारण ब्राह्मण नहीं हैं, हम कौन से ब्राह्मण हैं, भृगुवंशी में हमारा जन्म हुआ है, क्योंकि भगवान भी गीता में बोलते हैं सभी महर्षियों में मैं भृगु हूँ, तो भृगु मुनि जाने जाते हैं अपनी तपस्या में, तो वो उच्च कुछ कोटि के ब्राह्मण हैं। तो कह रही है हम तो भृगु वंशी के हैं, और जो इसका पिता है शर्मिष्ठा का पिता वो कौन है, हमारा शिष्य है, जो इसके पिता हैं वो हमारे पिता के शिष्य हैं, और फिर भी इसकी इतनी जरूरत कि इसने हमारे वस्त्रों को धारण कर लिया, ये तो इसी प्रकार से है जैसे कोई शूद्र वैदिक ज्ञान को धारण कर ले। जब ऐसा दिव्यानी बोलती है तो फिर शर्मिष्ठा को भी गुस्सा आ जाता है, तो शर्मिष्ठा भी क्रोधित होकर और सांस छोड़ते हुए अपने निचले होठों को दबाते हुए ये आज का श्लोक पूरी क्रूरता से बोलती है। वो कहती है कि तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है कि तुम तो हमारे यहाँ पे आश्रित हो, तुम ब्राह्मण लोग तो हमारे यहाँ पे आश्रित हो, तुम तो एक कौवे के समान भिखारी हो। तो देखिए दोनों फ्रेंड्स हैं, वैसे तो शर्मिष्ठा और देवयानी जब स्नान करने गई तो बहुत ही आनंद दे रही थी जैसे प्रसंग आता है, लेकिन छोटा सा ही क्योंकि शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्रों को स्वीकार कर लिया तो इस वजह से बहुत कलह पैदा हो गया। तो हम देखते हैं कलयुग का ये स्वभाव है, छोटी छोटी, श्रील प्रभुपाद जी भी इस तात्पर्य में चर्चा करते हैं कि छोटी छोटी बातों में लोगों को लड़ाई हो जाती है ना। बताया गया प्राणीन अल्पायुष सभ्या कलौ अस्मिन युगे जना मंदास मंद मते हो मंद भाग्य उपधृता। कलयुग कलह का युग है, छोटी छोटी बातों में लोग लड़ाई करते हैं, सीट के लिए लड़ाई करते हैं, ट्रेन में कोई जाता है कि हमारी सीट दे दो तुम्हारी सीट दे दो, और आपस में लड़ाई कर लेते हैं, सीट वहीं पे रह जाती है, कोई लैंड के लिए लड़ाई करता है, कोई पार्किंग के लिए, छोटी छोटी बातों में लड़ाई करता है। तो देखते हैं क्योंकि जो फ्रेंडशिप है शर्मिष्ठा और देवयानी की वो बहुत ही ज़्यादा बॉडीली कंसेप्शन पे बेस्ड थी, तो इस वजह से ही हालांकि वो स्नान कर रहे थे तो छोटी सी ही कुछ बात पर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और फिर हम देखेंगे क्योंकि फिर देवयानी को गुस्सा आता है और फिर शर्मिष्ठा को भी वो काउंटर कर्स करती है, तो और वो बोलती है कि आप जैसे कौवे जैसे भिखारी हो, भिखारी तो हो लेकिन आप किस समान भिखारी हो, कौवे समान। कौवा क्या करता है, वो चीजें खा लेता है जो कि निकृष्ट है, जैसे भागवतों के पहले स्कंद में बताया गया पांचवें अध्याय में तद वायसम तीर्थम, कौवे को उस तरह से बताया गया है कि जो कि जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, जो भौतिकवादी लोग हैं, उनको कौवे के समान कंपेयर किया गया है। भौतिक संसार में स्पिरिट भी है मैटर भी है, लेकिन जो भौतिकवादी लोग हैं वो मूवीज ये गलत गलत चलचित्र इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, तो उनको कौवे के समान बता रहे हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देवयानी भी शर्मिष्ठा देवयानी को क्या बोल रही हैं कि आप भी कौवे के समान भिखारी हो, जो कि हमारे जैसे दिए गए, जो हमारा जो फिल्दी थिंग है, जो हम लोग क्या देते हैं, बेकार चीज है, हम उनको देते हैं और आप इसको स्वीकार कर लेते। तो लेकिन बताया जाता है जो भक्त है वो हंस के समान है, वो हंस तो वो है जो कि अच्छी चीजों को स्वीकार करता है, जैसे हम बोलते हैं जय ओम विष्णुपाद परमहंस, तो एक परमहंस अवस्था वो है जो कि सब जगह भगवान को देख सकता है, स्पिरिट और मैटर में वो स्पिरिट को ही देख सकता है। मध्वाचार्य कोट करते हैं एक श्लोक, नारायणम मयम धीरा पश्यन्ति परमार्थिना जगदन्मयम लुब्धा कामुखा कामिनी मयम। कह रहे जो नारायण में मग्न है, नारायणम मयम धीरा, पर नारायणम मयम धीरा पश्यन्ति परमार्थिना, वो हर जगह भगवान की स्थिति को देख सकते हैं। जैसे कामुक व्यक्ति, एक कामांत व्यक्ति सब जगह काम दिखता है, एक धनान व्यक्ति को सब जगह धन के बारे में दिखता है, तो इसी वजह से जो नारायण में स्थित हैं वो हर जगह नारायण की स्थिति को महसूस करते हैं। प्रहलाद महाराज का वो ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं जब उन्होंने कहा कि क्या बोलते हैं कि सब जगह भगवान है। स्थावर जंगम देखी ना देखी तार मूर्ति, सर्वत्र जगत हो इष्ट देव स्फूर्ति। सब जगह वो भगवान की स्थिति को देख सकते हैं। तो यहाँ पर उनको वो कह रहे हैं कि हम लोग अपना सम्मान देते हैं आपको घटिया सा, हम लोग कौए के जैसे, प्रभुपाद जी इसमें समझाते हैं कि जैसे कौआ होता है वो गार्बेज पे बैठता है, तो हम लोग गार्बेज देते हैं और आप लोग उस गार्बेज को स्वीकार करते हो भिखारियों की तरह, क्योंकि आप उसे बहुत आसक्त हो। तो दोनों का ही विरोधाभास, ना ही वो सही प्रकार के देने वाले हैं और ना ही सही प्रकार के व्यक्ति लेने वाले हैं। जैसे मुझे ध्यान है जब हम छोटे थे तो हमारे घर में मेरी मदर ऐसे बोलती थी कभी कभार कि ना आपके जो पुराने कपड़े हैं वो घर में ब्राह्मणी आएगी, घर में ब्राह्मणी आएगी तो जो पुराने बर्तन हैं और पुराने कपड़े हैं उनको हम दे देंगे, जो हमारे लिए कुछ यूज नहीं है वो उनके लिए यूजफुल होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर शर्मिष्ठा भी बोल रही है कि हम लोग बिल्कुल बेकार सामान देते हैं और आप उसको, क्योंकि आप बहुत आसक्त हो, आप उसी पे डिपेंडेंट हो, तो आप उसको स्वीकार करने के लिए बहुत ही ललायत रहते हो। तो लेकिन वैदिक संस्कृति में वैसे ब्राह्मणों का जो कर्तव्य है वो ये है, क्योंकि वो मांगते हैं, ये ऑक्यूपेशन बताया गया है उनका कि वो घर घर में जाके भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि, और ये एक शिष्य का भी कर्तव्य बताया गया है, क्योंकि इससे उनके अंदर विनम्र भाव आता है। और ये संस्कृति बनाई गई है, वैदिक वर्णाश्रम की संस्कृति यही है, क्योंकि अगर हर कोई कमाएगा, हर ही कोई कमाने लग गया तो स्पिरिचुअल एलिवेशन कैसे होगा सोसाइटी का। तो ब्राह्मण का कर्तव्य बताया गया है कि वो भिक्षा तो मांगते हैं, लेकिन वो भिक्षा मांगते हैं सब कुछ भगवान को देने के लिए और अपने जीवन को निर्वाहित करने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण उन लोगों के भले के लिए, है ना। अगर ऐसा उनके लिए भले के लिए ये मांगना, क्योंकि अगर, क्योंकि जो जो ग्रस्त लोग हैं या जो कमा रहे हैं अनेक प्रकार के तरीके, अगर वो भगवान को अपना संपत्ति नहीं दे रहे हैं तो वो कभी भी उसका शुद्धिकरण नहीं होगा, और उनकी कभी भी, क्योंकि हमारे पास अनेक ऋण हो जाते हैं, देवर्षि भूता प्रणाम पितृणाम, तो बताया कि अनेक ऋण होते हैं और अनेक अलग अलग तरीकों से धन कमाया जाता है, उसमें अनेक प्रकार के त्रुटियां होती हैं। जब तक भगवान के और ब्राह्मण और वैष्णवों की सेवा में नहीं लगाते तब तक वो उसका शुद्धिकरण नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य यही बताया गया गृहस्थ आश्रम का कि वो चैरिटी और अतिथि सेवा, कि वो घर में अतिथियों को बुलाएं और चैरिटी करना, क्योंकि इससे उनकी एग्जिस्टेंस प्यूरिफाई होती है। लेकिन उनको ये अभिमान नहीं होना चाहिए, ना जैसे यहाँ पे शर्मिष्ठा बोल रही है देवयानी को कि आपको तो, आप तो एक कौए जैसे भिखारी हो, आप हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो। एक बार शिला भक्ति सिद्धांत महाराज कथा कर रहे थे तो एक उनके जो उनको बहुत संपत्ति देते थे मठ के लिए, वो बैठे हुए थे क्लास में और बहुत ही बातें कर रहे थे, ज़्यादा ध्यानपूर्वक क्लास को नहीं सुन रहे थे, तो सीधा शिला भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनको बहुत तेजी से डांट लगाई और क्या बोला कि ये मत सोचो कि आपने मुझे खरीद लिया है कुछ धन देके और मैं कुछ भी कर सकता हूँ मठ में आके, तो ऐसा मत सोचो क्यों। तो बहुत ही, तो इस तरह से शिला भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनको बोला कि आपको, आप हम आप पे डिपेंडेंट नहीं है, आप ये मत सोचिए, ये तो हमारा कर्तव्य है और भगवान की सेवा के लिए आप देते हैं आपके शुद्धिकरण के लिए। तो और श्री भागवतम के 34 स्कंद में भी पृथ्वी महाराज बोल रहे हैं अपने सारे प्रजावासियों को, ब्राह्मणों का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, बता रहे हैं ब्राह्मण संस्कृति से ही जो राष्ट्र है और जो समाज है वो संतुष्ट और सुखी रह सकता है, फल फूल सकता है। असलियत में कुछ ब्राह्मण है इसी वजह से संपत्ति भी है सही प्रकार से, जिस तरह से वो ब्राह्मणों का ग्लोरिफिकेशन भी करते हैं। और जैसे बताया गया कि, और यहाँ पर उनका कर्तव्य है कि वो अपना बेस्ट से बेस्ट दें सब कुछ, जो सबसे अच्छा है। प्रभुपाद जी बताते थे कि व्यक्ति को इतना देना चाहिए जितना उसे थोड़ा पिंच हो, मतलब उसे थोड़ी चोट लगनी चाहिए, तब उसका सेक्रीफाइस और प्रेम दिखेगा भगवान के प्रति और वैष्णवों के प्रति। तो जैसे ऐसे नहीं कि क्रो की तरह, ये तो कौवे हैं, इनको तो सब कुछ जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है वो दे दिया जाए और ये स्वीकार कर लेंगे क्योंकि उससे बहुत आसक्त है। ना ही ब्राह्मण को आसक्त होना चाहिए और ना ही जो देने वाले हैं उनको आसक्त होना चाहिए, उनको बेस्ट देना चाहिए और ब्राह्मणों को अपने उनकी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए अपने जीवन निर्वाह के लिए। क्योंकि और जैसे मैं बता रहा था कि जो ब्राह्मण है वो भिक्षा मांगते हैं, ये उनका कर्तव्य है, और उसके उससे मांगने से क्या होता है, उनका अहंकार कम होता है, उनका अभिमान भी कम होता है। क्योंकि जैसे अभी अभी कुछ लोगों की इनिशिएशन हुई थी तो मेरे से कुछ भक्त डिस्कस कर रहे थे, कह रहे थे मतलब एक भक्त हैं कोटा में और गुजरात में, बता रहे थे कि प्रभु जी बहुत मुश्किल होता है भिक्षा मांगना, मतलब मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, प्रोफेसर हूँ, और डर लगता है कि मुझे वो ले दोस्त ना मिल जाए मार्केट में और मेरे को कोई देख ना ले, ऐसा बुरा लगेगा कि मैं इतना बड़ा प्रोफेसर हूँ तो मेरे लिए। तो ये उनकी उनका एक वर्णाश्रम के अकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण कार्य है शिष्यों का और ब्राह्मणों का, कि वो भीख मांगे, उससे उनके अंदर विनम्रता आती है, अच्छे गुण डेवलप होते हैं। तो ऐसे मेरे से डिस्कस कर रहे थे, इतना मुश्किल हो रहा था, कह रहे थे 7 दिन के लिए बोला गया भिक्षा मांगने के लिए इनिशिएशन में, इतना मुश्किल हो रहा है तो कैसे मांगे। मैंने कहा ग्रुप में जा सकते हैं और ये, तो ये इसके लिए बताया जाता है कि गुरु के लिए आप भिक्षा मांगो। तो प्रभुपाद जी ने भी ऐसे ही प्रोग्राम स्टार्ट करे हमारे इस्कॉन में, लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम, बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। एक्चुअल में ये जो गुरुकुल का सिस्टम जो पहले होता था वो प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। मैं एक वरिष्ठ भक्त से सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि जैसे पहले के समाज में गुरु के लिए लकड़ी मांगा करते थे, लकड़ी, जैसे भगवान कृष्ण और सुदामा गए थे सांदीपनी मुनि के लिए आश्रम में, कि वो लकड़ी लेते थे गुरु के लिए। तो इसी प्रकार से उसी को ध्यान में रखते हुए किसी को भिक्षा मांगनी चाहिए कि जो पेपर है वो भी लकड़ी से बना हुआ है, दिस पेपर हैज कम फ्रॉम द वुड। तो वो कह रहे थे, हिज ग्रेस वशिष्य का गुरु कह रहे थे आई थिंक, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर है, तो वो कह रहे थे, हाँ उन्हीं से सुना था मैंने, कि तो जब हम जा रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में या लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम में तो हम भी गुरु के लिए एक भिक्षा मांग रहे हैं, और हमारे को सोचना चाहिए कि हम भार प्रकट कर रहे हैं, अपना भार प्रकट कर रहे हैं। तो ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया गया। एक बार ही सुनिश भक्ति विवाद भागवत महाराज कह रहे थे, इसीलिए हमारे को दो चीज के लिए कभी शर्माना नहीं चाहिए, एक तो प्रसाद, प्रसाद पाने में जितना प्रसाद मिले, ब्राह्मण भोजन प्रिय, तो ब्राह्मण को भोजन अच्छा लगता है, और दूसरा उसको कभी भी शर्माना नहीं चाहिए भिक्षा मांगने के लिए, क्योंकि उसका कर्तव्य उसको विनम्र बनाता है। और जब उसको विनम्र बनाता है, उसके अंदर अच्छे गुणों को गुरु के लिए एक से एक विनम्र भाव को विकसित करता है। और हम देखेंगे, और यहाँ पर ना ही शर्मिष्ठा का अच्छा चरित्र है, ना ही देवयानी का भी अच्छा चरित्र दिखाए। आज हम उसे थोड़ा डिस्कस करेंगे कि देवयानी ने क्या हुआ, देवयानी के बस छठ गलती से, आउट ऑफ इनोसेंस प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किसी मासूमियत होकर उन्होंने उनके कपड़ों को पहन लिया जल्दी जल्दी में, क्योंकि वे नग्न अवस्था में थे, शिवजी पार्वती आए थे और अब उन्होंने उसको ढकने के लिए जल्दी जल्दी में पहन लिया। लेकिन देवयानी को इतना अभिमान था कि हम शुक्राचार्य की पुत्री हैं जो कि कुल ब्राह्मण कुल गुरु हैं सबके, इन असुरों के, इनकी जरूरत कैसे हुई कि ये हमारे कपड़ों को स्वीकार कर सके, और वे क्रोध में आके सारे, हम देखेंगे जो ब्राह्मणों का विनाश हुआ जनरली क्रोध से हुआ है, अनेक अनेक उदाहरण है कि क्रोध के कारण आके उन्होंने शर्मिष्ठा का भ्रसना की खूब, कि कहा कि अपना पहले अपना गुणगान किया अभिमान पूर्वक है ना, और फिर उन्होंने उनकी खूब भ्रसना करी कि आप लोग शूद्र के समान हो जो वैदिक ज्ञान को हड़पना चाहते हो। तो जब अहंकार होता है तब व्यक्ति को क्या समझता है, वो मैं श्रेष्ठ हूँ, जैसे यहाँ पर हुआ, और श्रेष्ठता के कारण मैं दूसरों को ब्लास्फेम करता है, क्रिटिसाइज करता है, भर्सना करता है। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे देवयानी ने शर्मिष्ठा का अपमान किया और वह अपना गुणगान कर रहे हैं। असलियत में जो व्यक्ति असलियत में गुणवान है वो कभी भी अपना गुणवान नहीं समझता है। विद्या ददाती विनयम, विनयम ददाती पात्रता, सुभाषितानी में हमने सीखा था जब छोटे थे कि जिसके अंदर विद्या है उसके अंदर विनय है, और विनय ही पात्रता है भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए। भगवान बहुत आकर्षित हो जाते हैं विनम्र भाव से, तो जिसके अंदर विद्या है, विद्या से विनयता प्राप्त होती है, उसके अंदर अच्छे गुण पैदा होते हैं। जो पेड़ अच्छा है, जो पेड़ फल फूल रहा है, इसके अंदर फल है, वो झुक जाता है ना, और क्या बोलते हैं, इसी प्रकार से जिसके अंदर अच्छी नॉलेज है, जिसके अंदर ब्राह्मण कुल है, ब्राह्मणों का हम देखेंगे पतन इसी कारण हुआ क्योंकि वे अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगे और अहंकार पूर्वक और लोगों की भर्त्सना करने लगे। तो यहाँ पर और इसी तरह का प्रसंग, बहुत ही सिमिलर प्रसंग आता है भागवतम के चौथे स्कंद में, जहाँ पर भी कड़सिंह और काउंटर कड़सिंह हुआ है। एक व्यक्ति कर्ज कर रहा है और दूसरा व्यक्ति काउंटर कर्ज कर रहा है, और वहाँ पर क्या बोलते हैं, जब प्रजापति दक्ष, मरीचि, वशिष्ठ इत्यादि जो लीडर हैं इसके समाज के, उन्होंने सोचा कि जनसाधारण के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए। तो यज्ञ करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ की आयोजित किया, और प्रजापति दक्ष वहाँ पर एंटर करते हैं उस यज्ञ में, और उनके शरीर से इतनी कांति निकल रही है, इतना तेज निकल रहा है उनकी कांति से, जो सभी प्रजावासी हैं उनको ऐसा लगता है हम कुत्तुच्छ हैं। और जैसे ही प्रजापति दक्ष एंटर करते हैं उस असेंबली में, तो क्या होता है, वहाँ पर सभी लोग उनको प्रणाम करते हैं, उनके उनकी कांति को देख के और इतना उनका तेज को देख के, वो प्रजापति दक्ष हैं। लेकिन भगवान शिव और ब्रह्मा जी उनको प्रणाम नहीं करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जो ब्रह्मा जी हैं उनका आदर सत्कार करते हुए, क्योंकि उनके पुत्र हैं, उनको आसन देते हैं, आप यहाँ पर आके बैठिए। लेकिन जो दक्ष होते हैं उन्होंने, उनको क्या लगता है कि ये शिव जी ने मेरा आदर स्वीकार, मेरे को आदर नहीं दिया। सभी ने उनका आदर दिया लेकिन खाली दो व्यक्तियों ने आदर नहीं दिया, और ब्रह्मा जी ने तो उनका, उनको वेलकम भी किया था, उनको एक आदर सत्कार करते हुए उनको सीट भी प्रोवाइड किया था, लेकिन उनको लगता है कि इनकी कैसे जरूरत हो गई। तो जब व्यक्ति अंदर बहुत अहंकार होता है, रूपा जी लिखते हैं ह्यूमिलिटी की डेफिनेशन भागवतम के भगवद गीता में, नॉट टू बी एंक्शियस और बींग ऑनर्ड बाय अदर्स, हमारे को बहुत ज़्यादा सोचना नहीं कि मुझे सम्मान मिले। तो उसको जब सम्मान हल्का सा भी नहीं मिलता तो वो परेशान हो जाता है, ये विनम्रता की, बहुत एंक्शियस रहना सम्मान के लिए। तो ऐसे दक्ष, प्रजापति दक्ष को दो व्यक्तियों ने सम्मान नहीं दिया, और प्रभुपाद जी बताते हैं उसके तात्पर्य में, एक्चुअल में क्योंकि शिव जी और ब्रह्मा जी तो प्रिंसिपल डेमी गॉड्स हैं, उनको तो जरूरत नहीं है सम्मान देने की अगर अकॉर्डिंग टू एटिकेट। लेकिन दक्ष के अंदर वैसे ही शिव जी के लिए आक्रोश था क्योंकि मेरी ये पुत्री को ले गया है, सती को, और ये तो पेड़ के नीचे रहता है, इसका कोई गरीब है, कुछ कपड़े नहीं पहनता है, और जो मेरी पुत्री है वो तो इतने ऊंचे कुल में पैदा हुई है ना, उसने राजपाट देखा है। तो वैसे ही वो आक्रोश था और निकल गया। तो वैसे ही कभी बात होता है कि क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ऑलरेडी टेंशन होता है और कोई सम्मान ना दे, तो इस वजह से ऐसे दक्ष को बिल्कुल ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आक्रोश हुआ, और शिव जी की खूब भर्त्सना करते हैं वहाँ पर वो, कि आप यही कि जैसे मैं बता रहा था कि आप पेड़ के नीचे रहते हैं, आप कुछ पहनते नहीं हो, आपकी इतनी क्या जरूरत। और फिर देखिए क्या होता है, दक्षिणा उसके बाद कहते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति एक को क्रिटिसाइज करता है तो उसको सभी सब कुछ बुरा लग देखने लग जाता है, जब व्यक्ति बुरा देखता है तो पूरा संसार भी धीरे धीरे बुरा देखने लग जाता है। जैसे प्रभु जी बताते हैं कि कृष्णा बुक में, आई थिंक प्रभुपाद जी लिखते हैं, वेन वन डज नॉट प्रॉपरली हियर एंड चैंट, जब व्यक्ति सही प्रकार श्रवण नहीं, कीर्तन नहीं करता है और सब जगह फॉल्ट देखता है, तो उसको पूरा जगत ऐसा लगता है कि इट अपीयर्स हॉस्टाइल टू हिम, ऐसा लगता है कि कोई मेरे को मार रहा है, कोई मेरे को काट रहा है। तो ऐसे ही दक्ष को लगा कि ये मेरे ब्रह्मा जी, अपने पिताजी, कहते हैं ये पिताजी ने, पिताजी की भी भर्त्सना कर रहे हैं वो, कह रहे हैं पिताजी ने की बात मान ली मैंने और शिव जी को अपनी पुत्री को सौंप दिया, मतलब मैं पिताजी के बहकावे में आ गया और मैंने शिव जी की भर्त्सना कर दी। प्रभुपाद जी लिखते हैं वहाँ पर ऐसे तात्पर्य में कि ऐसा होता है व्यक्ति के साथ कि वो ब्रह्मा जी की भर्त्सना करते हैं। और फिर क्या होता है कि ऐसा करके प्रजापति दक्ष उस असेंबली से चले जाते हैं, और भगवान शिव तो टॉलरेट, क्योंकि वो वैष्णवानाम यथाशंभु है, वहाँ पर क्या बोलते हैं वो उसको टॉलरेट कर देते हैं। लेकिन जो उनके अनुयायी होते हैं नंदी और अनेक, वो फिर उनको गुस्सा आती है, ऐसा कैसे हो गया कि उन्होंने हमारे कोई भर्त्सना करी है, और फिर वो उनको काउंटर कर्ज करते हैं। पहले दक्ष ने कर्ज किया शिव जी को, और फिर शिव जी के अनुयायी ने वहाँ पर उनको क्या बोलते हैं, उनका क्रिटिसाइज किया, और वो क्या बोलते हैं अनेक श्लोकों में बोलते हैं, वो बोलते हैं सर्वभक्षा द्विजा वृत्या धृता विद्या तपोवृत वित्त देहेन्द्रिया राम या चाक्षा विचरंत विहा। कहना ये ब्राह्मण लोग एजुकेशन को प्राप्त करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े वाउज लेते हैं, क्यों? जस्ट अपने शरीर को सेटिस्फाई करने के लिए, और इनको कुछ नहीं समझ आता क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, जो दिखता है वो उसको खा लेते हैं। और कह रहे हैं कि ये लोग, फिर वो प्रार्थना कर रहे हैं, ये लोग लक्ष्मी को स्वीकार करेंगे घर पे भीख मांग मांग के, दे विल एक्वायर मनी बैगिंग फ्रॉम डोर टू डोर सिंपली फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द बॉडी। कह रहे हैं कि ये लोग कर्ज कर रहे हैं नंदी इनको, कि ये लोग भिक्षा मांगेंगे घर घर में जाके, क्यों? अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए। प्रभुपाद जी यहां पे लिखते हैं परपट में, द थर्ड कर्स इन्फ्लिक्टेड बाय नंदीश्वर ऑन द ब्राह्मणास हु सपोर्टेड दक्षा इज कंप्लीटली फंक्शनिंग इन द एज ऑफ कली। तो इस वजह से ही हम देखते हैं कलयुग में, कह रहे हैं कि इस वजह से ऐसा हुआ। तो यहां पे कलयुग में हम देखते हैं जो ब्राह्मण लोग हैं या फिर सही प्रकार के जो ब्राह्मण नहीं है वो ऐसा उनका चरित्र होता है। यहां पर भी ऐसे कर्सिंग काउंटर कर्सिंग हुआ, उन्होंने नंदी के अनुयायियों ने उनको कर्ज किया, ब्राह्मणों को दक्ष, प्रजापति दक्ष और उनके अनुयायियों को, और उन्होंने इनको उनको खूब काउंटर कर्सिंग हुआ। तो यहां पर ऐसे हम देखते हैं कि ऐसे पतन हुआ ब्राह्मणों का, जब उन्होंने अहंकार पूर्वक और अहंकार की वजह से, अपने ऊंचे कुल का अभिमान की वजह से उन्होंने ऐसा किया। ऐसे ही पहले स्कंद में ही भागवतम के आता है कि जब परीक्षित महाराज, आप लोग सब कथा जानते होंगे, कि जब वो जा रहे थे फॉरेस्ट में और शमिक ऋषि के आश्रम में घुसते हैं और उनका सम्मान, और वो क्योंकि उनका कर्तव्य है कि वो अतिथि सत्कार करें, तो लेकिन उसे वो पानी के लिए भी नहीं पूछते हैं, और परीक्षित महाराज को बहुत भूख और प्यास लग रही होती है, तो वो उनके शमिक ऋषि के ऊपर सर्प रख देते हैं। और जब उनके पुत्र आते हैं श्रृंगी ऋषि, और क्योंकि वो इनएक्सपीरियंस्ड है, प्रभुपाद जी लिखते हैं नोटोरियस है, इनएक्सपीरियंस्ड है, उनको पता नहीं है ब्राह्मण संस्कृति में ट्रेन नहीं है, लेकिन उनको ऊंचे कुल का अभिमान था। जब उनको देखा कि परीक्षित ऐसे कैसे हो गया कि परीक्षित ने मेरे पिता के ऊपर इस सर्प को रख दिया, तो उनको शराब दे देते हैं कि आपकी 7 दिन में मृत्यु हो जाए। तो वहीं से कलयुग में धीरे धीरे करके ब्राह्मण संस्कृति का विनाश होता गया। प्रभुपाद जी वहां पर समझा, क्योंकि वो जो शमिक ऋषि थे, सॉरी श्रृंगी थे, जो उनके पुत्र थे, वो इस ब्राह्मणिकल कल्चर में ट्रेन नहीं थे। वो उनको ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, तो उनके पास अच्छा तपोबल और अनेक प्रकार का तपोबल था, और ब्राह्मण के जो उनका अभिमान था ब्राह्मण जन्म का, इस वजह से उन्होंने उनको अभिशाप कर दिया। और इसी प्रकार से हम देखते हैं बहुत सारे प्रसंग हैं भागवतम में, जब भगवान बलराम जी जा रहे होते हैं तीर्थ यात्राओं पे, और किसको मिलते हैं? रोमहर्षक सुत को। तो उनको भी अभिमान होता है अपने विद्या का, क्या बोलते हैं? अदांतस्य अवनीतस्य वृथा पंडित मानिना। कह रहे हैं तुम्हारे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, अदांतस्य आप लोग के अंदर इंद्रियों में समित नहीं, अविनीतस्य ना ही आपके अंदर अच्छे गुण है, विनीत भाव नहीं है, और अपने आप को बहुत बड़े पंडित मानते हो, तो कुशाग्रास से उनका खत्म कर देते। तो ये महत्वपूर्ण गुण है ब्राह्मण या फिर उसके, कि उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, और दूसरा गुण जो यहाँ पे बलराम जी बता रहे हैं अविनीतस्य, उसके अंदर विनम्रता का भाव। तो ये गुणों को बताया जा रहा है, तो इस वजह से उनको भी वो कुशाग्रास से उनको खत्म कर देते हैं रोमहर्षक सुत को। और श्रील भक्तिरूप ठाकुर बताते हैं कि ऐसे ही कि चैतन्य शिक्षा अमृत में वो बताते हैं कि जब परशुराम जी ने, क्योंकि वो क्षत्रियों को मारा, तो इसी वजह से जो कलयुग में धीरे धीरे करके ब्राह्मण संस्कृति कैसे खत्म हुई, क्योंकि जो ब्राह्मणों को अभिमान हो गया, क्योंकि वो जो परशुराम जो जमदग्नि के पुत्र हैं उन्होंने क्षत्रियों का विनाश कर दिया, तो क्योंकि उनका कर्तव्य नहीं है, ब्राह्मण को आक्रोश नहीं प्रकट करना है, ब्राह्मण का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग बताया गया क्षमा, वो आक्रोश प्रकट नहीं करना चाहिए बल्कि, और परशुराम जी ने क्योंकि वो तो धर्म की संस्थापना के लिए किया उन्होंने, लेकिन जो ब्राह्मण लोग हैं वो उसको यूज कर लेते हैं कि हम ओवर पावर कर सकते हैं सभी जातियों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को और शूद्रों को, हम ओवर पावर कर सकते हैं अपने ब्राह्मण का जो बल है वो आध्यात्मिक शक्ति है, उसका उसकी बॉडी बिल्डिंग नहीं है, उसके अंदर ये नहीं है कि कितना किसको मार सकता है, उसका जो असली बल है वो आध्यात्मिक शक्ति है। तो लेकिन उस पशुराम के एग्जाम्पल से धीरे धीरे कलयुग में ऐसा होता गया और फिर सारी संस्कृति वर्णाश्रम धीरे धीरे डेटोरिएट हो गया, और जो क्षत्रिय थे उनको विश्वास नहीं रहा कि वैदिक संस्कृति जो कि ब्राह्मणों को पूज्य मानते हैं वो वैदिक संस्कृति लायक नहीं है, फिर इसलिए जैनिज्म आया, जो वैश्य थे वो क्या बोलते हैं वो बुद्धिस्ट बन गए, जो वैश्य थे वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए, जो क्षत्रिय थे वो जैनिज्म में चल गए, और जो वैश्य थे वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए, और जो शूद्र थे वो प्लंडरर्स और डकैत बन गए। तो इस तरह से धीरे धीरे पूरा वर्णाश्रम, क्योंकि एक सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि क्या बोलते हैं उनको अहंकार आ गया, अहंकार पूर्वक उनका विनाश होता गया धीरे धीरे। वही ग्रेस कमल लोचन भी कह रहे थे, इसीलिए बहुत सारे लोग ब्राह्मण समाज में परशुराम सभा लगाते हैं, क्योंकि क्या बोलते हैं परशुराम को अपना आइडियल मानते हैं कि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था और उन्होंने सब पे राज्य किया, तो हम भी सब पे राज्य कर लेंगे। तो इस वजह से धीरे धीरे अहंकार पूर्वक यहाँ पे, और अहंकार की वजह से उनको क्रोध आता है, और यहाँ पर हम देखते हैं क्रोध के कारण उन्होंने क्या बोलते हैं उनका उनकी भर्त्सना करते हैं, और धीरे धीरे संस्कृति खत्म होती है। और असलियत में व्यक्ति को, जैसे मैं बता रहा था कि असलियत ब्राह्मणों को गुणों पे आधारित होता है, इसलिए भगवद गीता भगवान क्या कहते हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म से किसी व्यक्ति को जाना जाता है। असली महत्वपूर्ण क्या है कि हमारा गुणों को डेवलप करना, भगवान किसी विद्या से, किसी तप से, किसी बहुत बड़े बड़े मिस्टिक योगा से प्रसन्न नहीं होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं जब व्यक्ति के विनम्र भाव से और भक्ति के अच्छे गुणों से। तो जैसे भागवतम के चौथे स्कंद में ही पृथ्वी महाराज को भगवान बोल रहे हैं, जब बहुत प्रसन्न हो गए उनसे, तो क्या कह रहे हैं, वरम वृणेध्वम भद्रम वो यूयम मे निरपनंदना सौहार्देना पृथक धर्मा तुष्टो हम सौहृदेनवा। क्योंकि पृथ्वी महाराज ने 100 यज्ञ कर रहे थे, और लेकिन इंद्र बीच में आए, उन्होंने उनके इंद्र उनके यज्ञ को रोक दिया, तो 99 यज्ञ कर पाए। और फिर इधर 2 बारी आते हैं, सॉरी पहले उनके यज्ञ को रोकने के लिए सन्यासी के रूप में, फिर ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं पृथ्वी आपको, आपका क्या लक्ष्य है, भगवान को प्रसन्न करना, इंद्र का क्या लक्ष्य है, पोस्ट को रखना, तो आप सेक्रीफाइस कर लो, आप सेक्रीफाइस कर सकते हो, इसलिए आपका कर्तव्य आप सेक्रीफाइस कर लो, इंद्र को मैं कुछ नहीं बोल सकता, तो आप सेक्रीफाइस करो। और फिर पृथ्वी महाराज ने अपने 100 सेक्रीफाइस को सेक्रीफाइस कर दिया, उन्होंने 99 सेक्रीफाइस किए। और फिर भगवान ये श्लोक बोलते हैं जब उनके सामने प्रस्तुत होते हैं, कहते हैं बहुत सुंदर श्लोक है, वरम वृणीत्वम भद्रम वो यूयम मे निरपनंदन, सॉरी ये परिचितास के लिए, इसमें है हाँ सॉरी, वरम चमत्कंचन मानवेंद्रा वृष्णि वहते गुणशील यंत्रिता नाहम वखे सुलभस्तपोर्भिर योगेन वा समचित्त समी। वो कह रहे वरम चकत मंचन मानवेंद्र विष्णु वहते हम गुणशील, आप गुणों से नियुक्त हो, मैं तो अच्छे व्यवहार और अच्छे गुणों से प्रसन्न होता हूं, नाहम मखे वही सुलभस्तपोर्भिर, मेरे को बहुत बड़ी तपस्या से और बहुत बड़े बड़े यज्ञ से और बहुत बड़े बड़े योगा से आप प्रसन्न नहीं कर सकते, इसीलिए मैं आप लोग आपसे बहुत प्रसन्न हूं, तो आप मुझे चाहिए, क्या मांगना चाहते हो आप मुझसे मांगिए, मैं तो उनसे प्रसन्न हूं। तो मतलब ये पृथ्वी को भगवान ऐसा बोलते हैं। तो ये असलियत में अच्छे गुणों को डेवलप करना असलियत में गोल है सभी सभी वर्गों का। और हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी एक ऐसे ही ब्रह्मचारी थे जो कि बहुत तपस्या करते थे, जो मिल्क दूध पीते थे, तो श्रीवास ठाकुर को क्या लगा, क्या बोलते हैं कि ये तो ब्रह्मचारी दूध पीता है और बहुत ही सतोगुण में है और बहुत अच्छा व्यवहार है, इतना तपस्या करता है, तो ये इसको और चाहता था महाप्रभु के आंगन में आना, श्रीवास आंगन में। तो उन्होंने कहा क्या बोलते हैं आप यहाँ पर आ जाइए, और उन्होंने लेकिन श्रीवास ठाकुर ने बोला आप थोड़ा सा कोने में ही बैठना, पीछे ही बैठना, और इस दिव्य जो ये राजस्थली है श्रीवास आंगन का, इसका दिव्य आनंद में रहना। तो लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में होते हैं तो उनको क्या लगता है कि उनको वो भाव व्यक्त नहीं हो रहे हैं, एक्सटेसी को महसूस नहीं कर रहे हैं, तो वो श्रीवास ठाकुर से पूछते हैं ऐसा कोई व्यक्ति है यहाँ पे जो कि क्या बोलते हैं होना उसको होना नहीं चाहिए, जो हमारा संगी नहीं है। तो श्रीवास ठाकुर बोलते सोचते हैं मैंने एक ब्राह्मण को यहाँ पे इन्वाइट कर लिया है। तो फिर वो चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं कि एक ब्राह्मण है जो कि बहुत ही तपस्या करता है और सत्वगुण में रहता है और क्या बोलते हैं खाली दूध पीता है, दूध पीता ब्रह्मचारी है ये, है ना, और तो इसको हमने यहाँ पर ले आए हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर बोलते हैं ये ऐसा कैसे, मेरे को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता है खाली दूध पीने से, मेरे को प्रसन्न कर सकता है भक्ति के माध्यम से, तो इसका कोई अधिकार नहीं है, यहां से इसको ले जाइए। तो फिर वो जो ब्रह्मचारी होता है वो चला जाता है वहां से। लेकिन अब क्या होता है सबसे महत्वपूर्ण चीज, अब वो जाते हुए ना वो उसको बहुत उसको लगता है वो बहुत ही ग्रैटिट्यूड फील करता है, बहुत ही वो कहता है कि मेरे को भगवान के थोड़े समय के लिए दर्शन मिले और भक्तों की कृपा से मेरे को क्या बोलते हैं थोड़े समय के लिए, जो कि जिस चीज के मैं लायक नहीं था। चैतन्य महाप्रभु तो अपने संगियों के साथ ही नृत्य करते हैं और उनके साथ ही वह श्रीवास आंगन में रहते हैं, लेकिन उस भक्त की कृपा से मेरे को थोड़े समय के लिए ही ये बहुत बड़ा सौभाग्य मिल गया, जो कि किसी को भी योग्य नहीं है, जो कि लक्ष्मी को भी नहीं मिलता वो सौभाग्य। तो ऐसा वो सोचते हुए जा रहा था। तो फिर चैतन्य महाप्रभु तो अंतर्यामी है परमात्मा के रूप में, उनको ये समझ आ जाता है और उसको श्रीवास ठाकुर तुरंत कहते हैं कि आप जाइए उसको बुला के ले आइए। तो उसको बुला के ले आते हैं, बुला के लाता है वहां पे और फिर चैतन्य महाप्रभु उनके शरीर उनके मस्तक पे अपने चरणों को रखते हैं और कहते हैं कभी भी अभिमान मत करना अपने इस दूध पीते हुए तपोबल का। तो फिर वो कहते हैं और आपसे आज आप भगवान उनको अपनी कृपा को देते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि क्या बोलते हैं दोनों ही ब्राह्मण सबसे महत्वपूर्ण अंग है कि अपने विनम्रता को डेवलप करना और अभिमान ना करना, जिस वजह से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।
कृष्णा पहले तो धन्यवाद प्रभु जी आपका इतना अच्छा प्रवचन के लिए। और मेरा जो प्रश्न है कि लाइक हम कलयुग में देखते हैं कि ब्राह्मणों का और गौ का गौ माता का मतलब लाइक उनका मतलब काफी स्थिति काफी खराब हो गई है, जबकि भगवान तो उनकी हमेशा रक्षा करते हैं और हमेशा उनके हित के बारे में सोचते हैं। तो ऐसा कैसे होगा कि भगवान इनकी स्पेशल मतलब इनका लाइक फिर भी उनकी ये पोजिशन क्यों हो गई मतलब ये?
हाँ जैसे जो मैंने बताया कि ये कलयुग का प्रभाव है, वर्णाश्रम कलयुग में सब कुछ टॉपसी टर्वी हो गया है, ये कलयुग आना है और इस वजह से ये भगवान का नियोजित है। जब श्रृंगी ने उनको शराब दिया अभिमान के कारण तो धीरे धीरे ब्राह्मण संस्कृति खत्म हुई, लेकिन हम ब्राह्मण संस्कृति को दोबारा विकसित कर सकते हैं। जो वैष्णव इसलिए प्रभुपाद जी ने ब्राह्मणिकल कल्चर को प्रमोट किया संकीर्तन के माध्यम से, जो व्यक्ति संकीर्तन करता है भगवान का नाम जब करता है तो उसके अंदर अपने आप ही सारे ब्राह्मणिकल गुण आ जाते हैं।
आजकल सिर्फ सड़कों पर गौ माता का हाल देखते हैं तो हमें लगता है कि भगवान इनकी स्वयं रक्षा करते हैं, लाइक फिर कैसे इनके ये पोजीशन जो है मतलब लाइक हमें बड़ा अचंभा होता है कि भगवान जो है मतलब उनका ये पोजीशन कैसे हो गई है।
ब्राह्मण तो रक्षा कर ही रहे भगवान तो रक्षा कर ही रहे हैं लेकिन हम रक्षा नहीं कर रहे हैं। ऐसे तो लोग बोलते भी है कि भगवान है मूर्ति कोई चुरा के ले गया, अगर भगवान है तो अपने आप को क्यों नहीं बचा सकते। ऐसे तो बहुत सारी चीजें क्या बोलते हैं हम लोग जो ध्रुत लोग हैं कलयुग के वो लोग कर रहे हैं ऐसा, तो हमारी पोजीशन खराब है इसमें। भगवान तो रक्षा करेंगे, भगवान तो कर ही रहे, जिनका भगवान को बहुत प्रिय है और जो गाय और ब्राह्मण है, हमारा कर्तव्य है कि भगवान के इंस्ट्रक्शन को पालन करना। भगवान ने तो बता दिया कि मुझे प्रिय है तो मेरे को तो
बताना चाहिए। इसमें आया सारा आया कि क्रोध के ऊपर कितना संकट आ गया थोड़ा सा क्रोध करने से, लेकिन हम भी देखते हैं जब एक्टिविटीज होते हैं तो हमें भी क्रोध आ जाता है, तो क्रोध पर कैसे बचा जाए इससे, कैसे इसका क्या क्या मीन्स है इससे बचने के लिए?
भगवान गीता में बताते हैं काम एशा क्रोध एशा रजोगुणा समुद्भवा, कि काम से क्रोध को उत्पन्न होता है ना, क्रोधात भवति वो संज्ञा संजायते कामा काम क्रोध अभी जायते, तो काम इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध आता है, जब हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता है तो क्रोध आता है, तो हमारे हिसाब से मतलब ड्यू टू लस्ट या अपनी इच्छा के कारण। तो ये दोनों ही पैशन से उकसुत है, काम और क्रोध। तो धीरे धीरे जब हम गुडनेस में ज़्यादा रहेंगे, आप उनके अंदर अपने अंदर सत्वगुण को डेवलप करेंगे जो कि भक्ति के लिए बहुत ही यूजफुल है, जब उसको हम डेवलप करेंगे तो क्या बोलते हैं हम धीरे धीरे इस पर विजय प्राप्त कर लें। हाँ, धीरे धीरे सत्वगुण में आना बहुत जरूरी है भक्ति को अच्छे से नियुक्त करने के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शिला प्रभुपाद की, नितायगौर की।